तुलसी की काव्य पद्धति का शेष अंश पृष्ठ 44। केवल दो एक जगह उन्होंने कवियों की अतिरंजित या प्रलपित उक्तियों का अनुकरण किया है, जैसे सीता जी के विरह ताप के इस वर्णन में जो हनुमान राम से कहते हैं, जेहि वाटिका बसती तह खगमृग तजी तजी भजे पुरातन भौन, स्वास समीर भेंट भई भोरेहु तेहि मग पग न धरेयो तिहु पौन। पर ये दोनों पंक्तियां ऐसी हैं कि यदि तुलसी के समान पाठकों को सुनाई जाए तो वे इन्हें तुलसी की न समझेंगे। तात्पर्य यह कि गोस्वामी जी की दृष्टि वास्तविक जीवन दशा के मार्मिक पक्षों के उद्घाटन की ओर थी, काल्पनिक वचित्र विधान की ओर नहीं। पैराग्राफ चेंज। ऊपर जो बात कही गई उसका अर्थ कलावादी लोगों के निकट यह होगा कि तुलसीदास नूतन सृष्टि निर्माण वाले कवि नहीं थे। ऐसे लोगों के गुरुओं का कहना है कि ज्ञात जगत परिमित है और मन कोष्टक में या अंतःकरण विशिष्ट आत्मा कोष्टक बंद का विस्तार असीम और अपरिमित है। अतः पूरी कविता वही है जो वास्तविक जगत या जीवन में बद्ध न रहकर वस्तु और अनुभूति दोनों के लोकातीत स्वरूप दिखाया करे। कल्पना के इन विश्वास मित्रों से यूरोप भी कुछ दिन परेशान रहा। कलावादी जिसे नूतन सृष्टि कहते हैं, वह स्वच्छ और स्थिर दृष्टों के निकट वास्तविक का विकृत रूप मात्र है। ऐसा विकृत जो प्रायः कुतूहल मात्र उत्पन्न करके रह जाता है, हृदय के मर्म स्थल को स्पर्श नहीं करता, कोई सच्ची और गंभीर अनुभूति नहीं जगाता। पैराग्राफ चेंज। तुलसी की गंभीर वाणी, शब्दों की कलाबाजी, उक्तियों की झूठी तड़क भड़क आदि खेलवाड़ों में भी नहीं उलझी है। वह श्रोताओं या पाठकों को ऐसी भूमियों पर ले जाकर खड़ा करने में ही अग्रसर रही है, जहाँ से जीते जागते जगत की रूपात्मक और क्रियात्मक सत्ता के बीच भगवान की भावमय मूर्ति की झांकी मिल सकती है। गोस्वामी जी का उद्देश्य लोक के बीच प्रतिष्ठित रामत्व में लीन रहना है, कुतूहल या मनोरंजन की सामग्री एकत्र करना नहीं। श्लेष, यमक, परिसंख्या इत्यादि कोरे चमत्कार विधायक अलंकार रखने के लिए ही उन्होंने कहीं संचार नहीं की है। इन अलंकारों का प्रयोग भी उन्होंने दो ही चार जगहों किया है। वे चमत्कारवादी नहीं थे। दोहावली में कुछ दोहों की दुरोहता का कारण उनकी चमत्कार प्रियता नहीं समास पद्धति का अवलंबन है, जिसमें अर्थ का कुछ आपेक्ष ऊपर से करना पड़ता है। जैसे यह दोहा लीजिए, उत्तम मध्यम नीच गति, पाहन सिकता पानी, प्रीति परीक्षा तिहुन की, बैर वृद्धि क्रम जानी, जो इस संस्कृत श्लोक का अनुवाद है। उत्कृष्ट मध्यम निकृष्ट जनेषु मैत्री, यदृच्छिलासु सिकतासु जलेषु रेखा, बैरम निकृष्टम भिमध्यम उत्तमे च, यदृच्छिलासु सिकतासु जलेषु रेखा। पृष्ठ 45। श्लोक के भाव को थोड़े में व्यक्त करने के लिए उत्तम मध्यम निकृष्ट को फिर उल्टे क्रम में न रखकर व्यतिक्रम शब्द से काम चलाया गया है। रेखा शब्द न लाने से अर्थ बिल्कुल लापता हो गया है। अनुवाद की यह असफलता समास या चुस्ती के प्रयास के कारण हुई है, नहीं तो गोस्वामी जी के समान संस्कृत उक्तियों का अनुवाद करने वाला हिंदी का और दूसरा कवि नहीं। दोहावली में जितने कलिष्ट दोहे हैं उनकी कलिष्टता का कारण यही समास शैली है। ऐसे दोहों में न्यून पदत्व दोष प्रायः पाया जाता है। पैराग्राफ चेंज। अनुकरण मनुष्य के स्वभाव के अंतर्गत है। गोस्वामी जी ने जैसे सब प्रकार की प्रचलित पद शैलियों या छंदों में रचना की है, वैसे ही कहीं दो एक जगह फूट और आलंकारिक चमत्कार आदि का भी कौशल दिखा दिया है, जिसके उदाहरण दोहावली में मिलेंगे। दोहावली में कुछ दोहे ज्योतिष की परिभाषाओं और संकेतों को लेकर रचे गए हैं। बात यह है कि दोहावली में गोस्वामी कवि और सूक्तिकार इन दोनों रूपों में विराजमान हैं। भक्ति और प्रेम का स्वरूप व्यक्त करने वाले दोहे तो काव्य के अंतर्गत लिए जाएंगे, पर नीति परक दोहे सूक्ति की श्रेणी में स्थान पाएंगे। पैराग्राफ चेंज। दोहावली के समान रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी कवि के रूप में ही नहीं, धर्मोपदेष्टा और नीतिकार के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। मानस के काव्य पक्ष का तो कहना ही क्या है, उसके भीतर मनुष्य जीवन में साधारणतः आने वाली प्रत्येक दशा और प्रत्येक परिस्थिति का सन्निवेश तथा उस दशा और परिस्थिति का अत्यंत स्वाभाविक मर्मस्पर्शी और सर्वग्राह्य चित्रण है, जैसा लोकाभिराम राम का चरित था, वैसे ही प्रसादमयी गंभीर गिरा संस्कृत और हिंदी दोनों में उसके प्रकाश के लिए मिली। इस काल में तो रामचरितमानस हिंदू जीवन और हिंदू संस्कृति का सहारा हो गया है। भारतवर्ष के जिस कोने में लोग इस ग्रंथ को पूरा पूरा नहीं समझ सकते, वहाँ भी वे थोड़ा बहुत जितना समझ पाते हैं उतने ही के लिए इसे पढ़ते हैं। कथाएं तो और भी कही जाती हैं, पर जहाँ सबसे अधिक श्रोता देखिए और उन्हें रोते और हंसते पाइए, वहाँ समझिए कि तुलसीकृत रामायण हो रही है। साधारण जनता के मानस पर तुलसी के मानस का अधिकार इतने ही से समझा जा सकता है। पैराग्राफ चेंज। इसी एक ग्रंथ से जनसाधारण को नीति का उपदेश, सत्कर्म की उत्तेजना, दुख में धैर्य, आनंदोत्सव में उत्साह, कठिन परिस्थिति को पार करने का बल, सब कुछ प्राप्त होता है। यह उसके जीवन का साथी हो गया है। पैराग्राफ चेंज। जिस धूमधाम से इस ग्रंथ की प्रस्तावना उठती है, उसे देखते ही इसके महत्व का आभास मिलने लगता है। ऐसे दृष्टि विस्तार के साथ, जगत की ऐसी गंभीर समीक्षा के साथ और किसी ग्रंथ की प्रस्तावना नहीं लिखी गई। रामायणियों में प्रसिद्ध है कि बाल के आदि अयोध्या के मध्य और उत्तर के अंत की गंभीरता की थाह में डूबने से मिलती है। बात भी कुछ ऐसी ही है। मनुष्य जीवन की दशा के हिसाब से देखें तो बाल कांड में आनंदोत्सव अपनी हद को पहुंचता है, अयोध्या में गृहस्थ की विषम स्थिति सामने आती है, अरण्य किष्किंधा और सुंदर कर्म और उद्योग का पक्ष प्रतिबिंबित करते हैं, तथा लंका में और उत्तर में कर्म की चरम सीमा, विजय और विभूति का चित्र दिखाई पड़ता है।